अध्याय 19 नैतिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम। नैतिक शिक्षा बच्चों को कैसे दें? मातृभाषा की ही तरह नैतिक शिक्षा का विकास विद्यार्थियों के स्कूल आने के पहले से ही प्रारंभ हो गया रहता है। विद्यालय में जब वह शिक्षक के संपर्क में आता है तो वह व्यवहार के उचित अथवा अनुचित होने संबंधी नैतिक अभिवृत्तियां, आदतों संबंधी धारणाएं कुछ विकसित हो गई रहती हैं। इनके विकास में माता पिता, घर परिवार, पास पड़ोस अथवा संपर्क में आने वाले लोगों का प्रभाव नैतिकता पर पड़ा रहता है। प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के नैतिक विकास को अनेक माध्यम तो प्रभावित करते ही हैं। विद्यालय में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनका प्रभाव बच्चों को नैतिक विकास के क्षेत्र में प्रभावित अवश्य करता है। अनेक ऐसे अवसर भी बच्चे के सामने आते हैं जहां उसे नैतिक निर्णय लेना होता है। वह परिस्थितियों के जाल में फंसकर सोच नहीं पाता कि वह क्या करे और क्या न करे। कुछ बच्चे स्वयं निर्णय लेकर कार्य कर जाते हैं और कुछ बच्चे माता पिता, शिक्षक तथा अन्यों की राय लेकर कार्य करते हैं। ऐसी दशा में बच्चों का मार्गदर्शित व्यवहार प्रशंसनीय हो जाता है। बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं जो बच्चों को निर्णय लेने का अवसर नहीं देते। इस क्षेत्र में बच्चों को असक्षम समझते हैं। जिन बच्चों का अधिक दुलार किया जाता है उनके माता पिता सोचते हैं कि अगर बच्चे ने स्वयं निर्णय ले लिया तो वह किसी बड़ी कठिनाई में पड़ सकता है। ऐसी अवधारणाओं से बच्चों का विकास दोषपूर्ण हो जाता है। अभिभावक ऐसे बच्चों को किसी भी प्रभाव से दूर रखते हैं। फलतः बच्चे प्रभावहीन होकर ठीक से विकसित नहीं हो पाते। माता पिता औचित्य पूर्ण चिंतन एवं संकल्प के विकास के लिए अध्यापक और विद्यालय से आशा रखते हैं कि उनका बच्चा स्वयं निर्णय लेने के योग्य हो जाए। यहाँ पाठ्यक्रम संबंधी ऐसे प्रावधान देने का प्रयत्न किया गया है जिससे वातावरणीय तथा घर से प्राप्त उन प्रभावों को प्रतिबंधित किया जा सके जो नैतिकता संबंधी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं उत्पन्न करते हैं और उन अभिवृत्तियों, कौशलों तथा आदतों को बढ़ा सके जो इस संदर्भ में वांछनीय है। नैतिकता की शिक्षा कैसी दी जाए? एक पृथक विषय के रूप में अथवा जहां आवश्यक हो अन्य विषयों के साथ संदर्भ में। एक, क्या नैतिकता को अन्य विषयों की तरह एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाए अथवा सामान्य रूप में जहां आवश्यक हो इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। दो, क्या नैतिक शिक्षण अधिगम को औपचारिक रूप से समय सारणी में स्थान दे अथवा नैतिक समस्याओं का समाधान उसी समय या उसी संदर्भ में किया जाए जिस प्रकार संयोगवश वह पैदा होता है। तीन, क्या नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों को विद्यालयी संगठन में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। चार, क्या किसी विशेषज्ञ को नैतिक शिक्षा का भार सौंपना चाहिए अथवा प्रत्येक अध्यापक को इस कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। पांच, इस बात के लिए कैसे आश्वस्त हो कि जो कुछ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है वह बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं के अनुकूल है। एक विषय के रूप में नैतिक शिक्षा, क्या नैतिक शिक्षा को एक विषय के रूप में समझा जाए या नहीं? वैसे सदा से ही अन्य विषयों की अपेक्षा नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। फिर भी अन्य विषयों की भांति इसे अलग विषय नहीं माना गया। प्राचीन भारत में तो नैतिक शिक्षा पढ़ाने के लिए अलग से अध्यापक होते थे जिन्हें आचार्य कहा जाता था। बौद्ध और जैन शिक्षा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्पष्ट हुआ कि पहले नैतिक शिक्षा पृथक विषय के रूप में शिक्षा का विषय नहीं था और न आज है। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जैसे जॉन विल्सन जैसे लोग नैतिक शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं। नैतिक शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में देखने और स्वतंत्र रूप से पढ़ाए जाने के लिए विल्सन के विचार और उनके तर्कों को देख लिया जाना यहाँ आवश्यक है। नैतिक शिक्षा एक विषय के रूप में विल्सन का विचार। एक, उनका सुझाव है कि कम से कम सप्ताह में 2 घंटे नैतिक चिंतन के कार्य के लिए निश्चित करना चाहिए तथा छात्रों के ज्ञान का अनौपचारिक रूप से समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बोअर महोदय नैतिक शिक्षा में नैतिक स्वायत्तता की महत्ता की विवेचना करते हुए विल्सन का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि नैतिक शिक्षा कि किसी भी कार्यक्रम में नैतिक तर्कणा के लिए निर्देश अनिवार्य रूप से सम्मिलित किए जाने चाहिए। व्हाइट ने अनिवार्य रूप से विल्सन का समर्थन इस मामले में कि अनिवार्य रूप से एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए समर्थन तो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका विचार है कि यदि यह स्पष्ट हो जाए कि कुछ ऐसे घटक हैं जिनका शिक्षण अन्य विषयों के पाठ्य विषयों के साथ नहीं किया जा सकता, तो उस दशा में नैतिक शिक्षा को एक विषय के रूप में रखा जा सकता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में बड़े विद्यार्थियों के लिए नीति शास्त्र विषय को सम्मिलित करना चाहिए। 4, ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे नैतिक विचार और विवेकपूर्ण विचारों का अंतर स्पष्ट कर सकें। 5, हर्स्ट ने नैतिक शिक्षा को पाठ्यचर्या में एक भिन्न अवयव के रूप में सम्मिलित करना चाहिए ऐसा मानते हैं। ये आशा नहीं करनी चाहिए कि नैतिक शिक्षा में जो बातें सीखनी चाहिए उसे बिना अलग विषय के रूप में पढ़ाया सीख लेंगे। जो प्रकरण महत्वपूर्ण है उनको विधिवत अलग से समझना होगा। 6, नैतिक निर्णय करने में एक विशेष प्रकार की क्षमता आवश्यक है। यह क्षमता उनमें है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिए करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसी परिस्थितियों में कुछ समस्याएं सामने आती हैं, जैसे नैतिक शिक्षा का दायित्व किस शिक्षक को दिया जाए, क्या इसके लिए नैतिक शिक्षा विशेषज्ञ होना चाहिए। 3, अन्य अध्यापक क्या नैतिक शिक्षा के अध्यापक को अपने से उच्च नैतिक बल वाला स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। 4, क्या अन्य अध्यापक नैतिकता सिखाने से अपने को मुक्त समझेंगे। 5, यह प्रश्न उठता है कि भौतिक शिक्षा देने का कार्य विशेषज्ञ अध्यापक को सौंपा जाए अथवा अन्य सभी अध्यापकों को। सारांश यह है कि सभी शिक्षकों का कार्य है कि वे बच्चों के नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के विकास में सहयोग दें। सभी लोग बच्चे की नैतिकता को ध्यान में रखें, अनुशासन और चरित्र की भावना विकसित करने के लिए स्वयं अध्यापक को भी अपने अंदर वैसा ही चरित्र और अनुशासन लाना होगा तथा उसे व्यावहारिक रूप देना होगा, क्योंकि बच्चों का नैतिक अधिगम अनुकरण पर निर्भर होता है। विद्यार्थियों और अध्यापकों में परस्पर जनतांत्रिक ढंग से मेलजोल और संभाषण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि परस्पर संप्रेषण कौशल के माध्यम से नैतिकता सिखाई जाए, जिससे बच्चे का नैतिक निर्णय ले सकने योग्य हो। शिक्षक का आचरण चरित्र और व्यवहार उत्तम हो तभी वह नैतिक शिक्षा देने में सफल होगा। विद्यालय के विद्यार्थियों में कठोर अनुशासन थोपे न जाए, अन्यथा वे नैतिक निर्णय लेने में असक्षम होंगे। जनतांत्रिक वातावरण का होना एक आवश्यक शर्त है। बच्चों को नैतिक निर्णय लेने को स्वतंत्रता है। दूसरी बात यह है कि अध्यापक को उत्तम सोच हो, उसका नैतिक व्यवहार उत्तम हो, जिससे वह नैतिक शिक्षा के योजना में सफल हो सके। उसका अपना आचरण परिस्थिति के अपेक्षाओं के अनुकूल तर्कणा युक्त खुला और लचीला होना चाहिए। जब अध्यापक अपने व्यवहार में लोकतांत्रिक होगा, उसी अवस्था में बच्चों के से तर्कणा युक्त और दूसरों के हितों का ध्यान रखने वाला व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। विद्यालय का वातावरण। विद्यार्थियों की नैतिक शिक्षा के विषय में दो बातों का प्रभाव पड़ता है, विद्यालय की संरचना, सामाजिक वातावरण। ये दोनों विशेष भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के वातावरण में प्रधानाचार्य, अध्यापक और कभी कभी आने वाले अभिभावक होते हैं। इन सब के मध्य परस्पर सहानुभूतिपूर्ण सहयोग भावना होनी चाहिए। सभी लोग मिलकर विद्यार्थियों से निकट संबंध बनाए रहें। विद्यार्थी मिलजुल कर सबका सम्मान करें। प्रधानाचार्य को चाहिए सबके साथ मिलजुल कर रहें। यदि सबको सबसे पृथकता रखेंगे तो वे सबकी दृष्टि में डरावने और हवा बने रहेंगे। इस भावना के स्थान पर सभी लोगों में सबके कल्याण और सुखमयता की कामना होनी चाहिए। व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का सम्मान नैतिकता की आधारशिला है। नैतिक शिक्षा रूप में शिक्षित होने का अर्थ है सामाजिक प्राणी बने रहना, दूसरों के साथ संप्रेषण अथवा वैचारिक आदान प्रदान करना और दूसरों के हितों को ध्यान में रखना। एक विद्यालय जिसके वातावरण में नैतिक और सामाजिक व्यक्तियों की विशेषता को नहीं पहचाना जाता, वह किसी प्रकार के नैतिक कार्य की व्यवस्था नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे नैतिकता सीखे और नैतिकता के रास्ते पर चले, तो विद्यालय में उनकी वैयक्तिक पहचान होनी चाहिए, जिससे बच्चे यह समझ सके कि उनकी आवश्यकता, उनका सम्मान है और वे समाज के सदस्य हैं। बच्चों के स्व के निर्माण में अध्यापकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैयक्तिक संबंध महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय का प्रशासनिक ढांचा न्यायपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवहार का पक्षधर होना चाहिए, वातावरण में न्याय निष्पक्षता स्वायत्तता हो, व्यक्तियों का सम्मान किया जाए, सभी में प्रेम भाव हो। यदि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का सृजित किया जाए, तो अलग से विषय के रूप में नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। विषयों के पाठों के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है, तो उन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए जहां पर तनिक भी नैतिकता की झलक हो। इतिहास विषय नैतिकता के विकास में सहायक है, साहित्य भी कम सक्षम नहीं है। अध्यापक का कार्य है कि वह अध्यापन करते समय उन नैतिक दशाओं की इस प्रकार व्याख्या करे, जिससे स्पष्ट हो कि परिस्थितियों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्यों। नैतिक शिक्षा के तीन प्रतिरूप, नैतिक सिद्धांत रोपण प्रतिरूप, नैतिक शिक्षा का मूल्य स्पष्टीकरण उपागम, नैतिक शिक्षा का ज्ञानात्मक विकासात्मक उपागम, इन तीनों प्रतिरूपों के संबंध में नीचे चर्चा की गई है। नैतिक सिद्धांत रोपण प्रतिरूप। किसी समाज या समूह के लिए कुछ विशेष मूल्य उचित समझे जाते हैं। बच्चे नैतिक आचरण करके उस आचरण पर लोगों की प्रशंसा प्राप्त करके नैतिकता सीख जाते हैं। बच्चे अच्छे और उचित मूल्यों से प्रभावित होते हैं। अनैतिक और गलत मूल्यों के लिए उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, जैसे मिथ्या भाषण गलत है। शिक्षक को विश्वास होता है कि संसार के कुछ धनात्मक मूल्य हैं, जिन्हें बच्चों को कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर ग्रहण करना चाहिए। रोज बच्चा यह सोच सके कि उसमें मूल्यों की इतनी बड़ी सूची में से कुछ अच्छे गुण वाले कार्य किए हैं। कोहल वर्ग ने इसको सद्गुणों का झोला कहा है। नैतिक शिक्षा के लिए यह एक सहज बुद्धि उपागम है। इसके अनुसार सद्गुणों का अध्यापन उपदेशों द्वारा तथा पुरस्कार और दंड द्वारा किया जाता है। पतंजलि योग में 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, जो सामाजिक और वैयक्तिक दृष्टि से ग्रहण करने योग्य हैं। जैन और बौद्ध दर्शनों में भी सद्गुणों की लंबी सूचियां प्रस्तुत की गई हैं। बौद्धों या अष्टांगिक मार्ग और जैनों का 5 महाव्रत तथा 10 गुण धर्म इसी प्रकार के सद्गुण हैं। शिक्षकों के पास ऐसे सभी सद्गुण होते हैं जिन्हें वह अपने बच्चों को सिखाते हैं। स्कॉर्फ ने अपने सद्गुणों के झोले की सूची निम्नांकित प्रकार से प्रस्तुत किया है। 1. आत्मसंयम संतुलन, इतना न खाएं कि मंदता का शिकार हो जाएं और इतना न पिएं कि मतवाला हो जाएं। मौन, तभी बोलिए जब आपका वचन दूसरों के लिए लाभदायक हो, अन्यथा नहीं। व्यवस्था कर्म, अपनी प्रत्येक वस्तु को निश्चित स्थान पर और निश्चित क्रम में रखना चाहिए। जो श्रेयस्कर है उसके लिए संकल्प करें, मित व्ययिता, थोड़ा खर्च करें, किसी भी चीज का अपव्यय न करें, अध्यवसाय समय नष्ट न करें, सदैव किसी न किसी कार्य में लगे रहें, निष्कपटता और सद्भाव, किसी प्रकार का छल कपट न करें, न्यायपरायणता, किसी को आहत करके किसी का बुरा न करें, संतुलन अति से बचें, स्वच्छता, शरीर वस्त्र और आदतों में अपवित्रता या गंदापन सहन न करें, प्रशांति, छोटी छोटी बातों में विचलित न हो, ब्रह्मचर्य, यौनानंद का उपयोग केवल स्वास्थ्य और संतान के लिए ही करें, विनय, महान व्यक्तियों का अनुकरण करें, अच्छे और नैतिक कार्यों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार और बुरे कार्यों को के लिए दंड की व्यवस्था होती है। साहित्य के सभी पाठों में कोई न कोई सीख अवश्य मिलती है। इस सिद्धांत में 3 लक्षण पाए जाते हैं। नैतिकता को देश काल के संदर्भ में किसी समाज विशेष द्वारा स्वीकार्य सद्गुण के रूप में परिभाषित करना इसमें मूल्यों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार के नियमों के रूप में किया जाता है, ईमानदारी से बढ़कर कोई नीति नहीं, अपने बड़ों का सम्मान करो। 2. यह सिद्धांत मानता है कि बच्चों नैतिकता विषयक बातों को अपने माता पिता द्वारा प्रस्तुत नैतिक उदाहरणों से सीखते हैं। इसका उद्देश्य लड़कों को ठोस नैतिक आदतों का प्रशिक्षण देना और सामाजिक बुराइयों से बचना है। 3. जिन मूल्यों का शिक्षण आज दिया जा रहा है वे आगे भी स्थिर रहेंगे, जैसे आदर व्यवस्था, देश के प्रति सम्मान आदि आगे की शताब्दियों में ही कायम रहेंगे। नैतिक शिक्षा का मूल्य स्पष्टीकरण उपागम। अच्छे कार्य पुरस्कृत और बुरे कार्य दंडित होते हैं। इन्हीं नियमों का आदर आज भी होता है जिनका आदर पहले होता था। मूल्य प्रशिक्षण के लिए विद्यालय अपने गुप्त पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय का परंपरागत कार्य संस्कृति का संप्रेषण है। मूल्यों को मन में बैठाने, उन्हें सजोए रखना सभी सिद्धांत रोपण है। यह सिद्धांत असफल है। लोग पूजा गृहों में जाते हैं फिर भी चोरी करते हैं, शोषण करते हैं। वास्तव में जिन्हें मूल्य कहा जा सकता है, रैक के अनुसार उसकी निम्नांकित कसौटियां हैं। मूल्य स्वतंत्र रूप से चयनित हो, बहुत से विकल्पों में उन्हें चुना गया हो, संभावित प्रतिफलों में छाट कर उन्हें चुना गया हो, मूल्य ऊंचा हो, आदर योग्य हो, मूल्य सार्वजनिक रूप से आदर योग्य हो, उसका प्रयोग करके देखा गया हो, कई बार प्रयोग करके देखा जाए कि वह अच्छा है। मूल्यों की पूर्व धारणाएं। मूल्य वैयक्तिक संपत्ति, विचार या मत है। मूल्य ठीक या गलत नहीं होते। हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, चाहे उन्हें कोई पसंद करे अथवा नहीं। मूल्य स्पष्टीकरणवादी को ध्यान में रखता है। बच्चा समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को स्वीकार करने की बजाय अपने स्व मूल्य विकसित करता है। 3. उसकी धारणा है कि समाज के मूल्य टूट चुके हैं। समाज में मौजूद नैतिक बहुलवाद व्यक्तियों को अपने लिए मूल्य परिभाषित करने के लिए विवश करता है। अतः मूल्य स्पष्टीकरण की एक व्यक्ति सापेक्ष उपागम है। इनके अनुसार मूल्य मूर्त एवं वस्तुपरक होते हैं, जिन्हें बच्चों के दिमाग में बैठाया जा सकता है। 3. नैतिक शिक्षा का ज्ञानात्मक विकासात्मक उपागम। बहुत से अध्यापक उक्त दोनों उपागमों में किसी को नहीं चुनना चाहते। उनका कहना है कि सद्गुणों के झोले में से एक गुण ऐसा भी नहीं जिनकी उपयोगिता सार्वभौमिक हो अथवा वह गुण हर परिस्थिति में श्रेय हो। इस उपागम में किसी भी मूल्य का वर्णन स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है तो वह मूल्य उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से उचित होगा। शिक्षक दुविधा की स्थिति में फंस जाता है, लेकिन कोहलबर्ग और पियाजे द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक विकासात्मक उपागम हमें निर्णयन और निर्णयन की स्थिति से मुक्ति दिलाता है। दोनों उपागमों का प्रभावकारी विकल्प देता है। दोनों रूपों में अलग है। 1. इस उपागम से यह सुझाव मिलता है कि अध्यापक का मार्गदर्शन सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा हो, न कि समाज द्वारा मान्य मूल्य अथवा स्वतंत्र मूल्यों द्वारा। 2. बच्चे का नैतिक अधिगम बच्चे की नैतिक अवस्थाओं की एक श्रृंखला के अनुसार होता है। इन अवस्थाओं में बच्चे के ठीक और गलत अथवा अच्छा या बुरा संप्रत्ययों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, आरंभ में कोई कार्य इसलिए बुरा है कि माता पिता उसे बुरा कहते हैं, लेकिन बड़ा होने पर वह किसी कार्य को इसलिए बुरा कहेगा कि उससे दूसरों का अहित हो।